नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात के मद्देनजर देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया। विधानसभा में राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित। सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। और राज्य में समर्थन मूल्य पर चने और सरसों की खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 25 मार्च से। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में जल शक्ति मंत्रालय के इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि अब इस मिशन का ध्यान बुनियादी ढांचे के निर्माण की जगह सेवा वितरण पर केंद्रित रहेगा।
इस जल जीवन मिशन का 2.0 वर्जन अप्रूव हुआ। 1.0 वर्जन इतना महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचा नल से जल। अब इन सारे प्रोजेक्ट्स की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, वाटर सोर्स, सोसाइटी को जितनी डिफरेंट जो कमिटीज बनी है, विलेज की कमिटी, ग्राम सभा की कमिटी, पंचायत की कमिटी, इन सबको इन्वॉल्व करना, फिर जहां पे पॉपुलेशन बढ़ रही है वहां पे नए सोर्सेज निकालना, एक तरीके से अब इसको सस्टेनेबल बनाने का टाइम आया। शुरू में टेक ऑफ करना, कवरेज लाना, अब है इसको सस्टेनेबल बनाना।
इस योजना के पुनर्गठन के लिए कुल 8,69,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है, जिसमें केंद्र सरकार की सहायता राशि 3,59,000 करोड़ रुपए होगी। मिशन के सुचारू संचालन के लिए सुजलम भारत नाम से एक राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव या सर्विस एरिया आईडी आवंटित की जाएगी। इससे पानी के स्रोत से लेकर नल तक की पूरी पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की डिजिटल मैपिंग की जा सकेगी। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात के मद्देनजर देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रभावी कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस निर्णय का उद्देश्य गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना और जमाखोरी पर रोक लगाना है। सरकार ने प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और वितरण की प्राथमिकताएं तय करने के साथ ही तेल रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में भी प्रशासन ने आमजन से कालाबाजारी के मामलों की सूचना देने की अपील की है। पाली के जिला रसद अधिकारी ने कहा कि उपभोक्ता गैस आपूर्ति को लेकर परेशान ना हो। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से 5 से 7 दिनों में होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की अभी, उसमें अभी होटलों को, फैक्ट्रियों को केवल जो घरेलू गैस सप्लाई है उसको विशेष रूप से मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा जो निःशुल्क संस्थाएं हैं, जैसे वृद्धा आश्रम है या कोई हॉस्पिटल है, इमरजेंसी संस्थाएं हैं, उनको तो मांग के अनुसार उनको आपूर्ति की जा रही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। यदि कहीं पर किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी की शिकायत अगर हो तो हमें अवगत कराए, हम जाँच करके उसकी कार्रवाई करेंगे। अगर किसी ने पहले सिलेंडर ले लिया है तो उसकी नेक्स्ट बुकिंग जो है 25 दिन बाद होगी। ये गाइडलाइन मांग को ध्यान में रखते हुए की गई, तो इसमें आम जनता ध्यान रखे कि 25 दिन बाद ही बुकिंग कराए।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL और भारत पेट्रोलियम ने कहा है कि LPG उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपभोक्ताओं तथा अस्पतालों और स्कूलों जैसी आवश्यक जगहों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑयल कंपनियों ने जानकारी दी कि अन्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों की समीक्षा तेल विपणन कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक समिति द्वारा की जाएगी। ऐसे अनुरोधों को उनकी योग्यता, आवश्यकता और LPG की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच राज्य के भीलवाड़ा जिले के एक दंपत्ति सुरक्षित वतन लौट आए हैं। रौनक बाहेती और सुचिता बाहेती ने अपनी सकुशल वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। ये दंपत्ति पर्यटन के लिए दुबई गया था। इसी बीच पश्चिम एशिया में तनाव पैदा होने के बाद घबराए दंपत्ति ने भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय से संपर्क कर मदद मांगी। भारत सरकार के सहयोग से वे 5 मार्च को सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। रौनक बाहेती ने कहा कि भारत की मजबूत विदेश नीति के कारण ही संकट के समय उन्हें मदद मिल पाई।
हम यूएई गए थे, 22 तारीख को हम लोग दुबई पहुंचे थे और उसके बाद 28 तारीख से वहाँ जो पहला ब्लास्ट हुआ वो हमारी आंखों के सामने हुआ। वहाँ पे भी हमको भारत सरकार की बहुत मदद मिली। यहाँ के जो सांसद साहब थे उन्होंने हमारी बहुत मदद करी। विदेश मंत्रालय में जब हमने मेल डाले तो वहाँ से हमें मदद मिली। ये हम सकुशल बहुत ही आसानी से, जिस तरह से हम तनाव का माहौल है, ये भारत ही है जो हमको बहुत आसानी से इतने बड़े युद्ध से लेके आया वापस।
विधानसभा में आज राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खरा के जवाब के बाद सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित किया। इस विधेयक के पारित होने से अब 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए पात्र होंगे। विधेयक पर चर्चा के दौरान सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम केदर ने पट्टा वितरण की स्थिति पर अपनी बात रखी। वहीं विधायक घनश्याम मेहर, नरेंद्र बुढ़ानिया और हरिमोहन शर्मा ने भी चर्चा में भाग लिया। विधेयक पारित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सत्र की समीक्षा की और सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने और सरसों की खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 मार्च से शुरू होंगे। पहले कोटा, अजमेर, भरतपुर और श्रीगंगानगर के क्षेत्रीय कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि राजफेड के माध्यम से ये खरीद 25 मार्च से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि बाकी 4 क्षेत्रीय कार्यालयों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर में ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू होगी। इन केंद्रों पर 1 अप्रैल से खरीद की जाएगी। श्री दक ने बताया कि सरसों का समर्थन मूल्य 6,200 रुपए प्रति क्विंटल और चने का समर्थन मूल्य 5,875 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। राज्य में सरसों के लिए खरीद सीमा 13,78,000 मेट्रिक टन और चने के लिए 5,53,000 मेट्रिक टन निर्धारित की गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि भारत आज विश्व का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है।
भारत जो आज विश्व का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है एग्रीकल्चरल और मरीन प्रोडक्ट्स, जो आज लगभग 5,00,000 करोड़ रुपए का हमारे किसानों का, हमारे मछुआरों के उत्पाद को निर्यात करता है, वो आगे आने वाले दिनों में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे नामी होगा कि हम विश्व के सबसे बड़े निर्यातक बनेंगे। इस विश्वास के साथ हम आगे जा रहे हैं।
राज्य सरकार ने कृषि उपज मंडी प्रांगण भूमि अर्जन नीति को स्वीकृति दे दी है। इस नीति का उद्देश्य मंडियों के विकास के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना है। सरकार ने विभिन्न कृषि उपज मंडियों में विकास कार्यों के लिए 22 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी मंजूर की है। वर्ष 2026 के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित गफरुद्दीन मेवाती जोगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मीडिया से बातचीत में श्री जोगी ने कहा कि ये सम्मान उनकी लोक कला और मेवाती संस्कृति के लिए गौरव की बात है।
पंगवादन का नौकर आगामी का मैं इसको बहुत गौरवित करता हूँ क्योंकि मेरी लुप्त होती हुई कला को खुशी है इस वक्त। अगर मैं ये नहीं मिलता तो मुझे यहाँ कौन बुलाता था। मुझे जब ही लोग लाइक करने लगे बुलाने लगे हैं, जब साहब ने नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री जी ने मुझे ये अवार्ड का नाम दिया है पद्म श्री जी को समझिए उस दिन से लोग बहुत लाइक कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी डूबती हुई कला इसके माध्यम से वो बच गई है और अब ये आगे तक जाएगी।
गौरतलब है कि गफरुद्दीन मेवाती को कला के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित नागरिक अलंकरण के लिए चुना गया है। प्रदेश में शीतलाष्टमी का पर्व कल मनाया जाएगा। इससे पहले आज परंपरा के अनुसार रांधा पुआ मनाया जा रहा है। इस दौरान घर घर में शीतला माता को अर्पित करने के लिए पकवान बनाए जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर आज ही शीतला माता की पूजा की गई और उन्हें ठंडे भोजन का भोग लगाया गया। इस पर्व को बासुड़ा भी कहा जाता है। राज्य में जालौर, सिलुम्बर, पाली, सिरोही और अन्य जिलों में शीतला माता मंदिरों में मेले लगे हैं। सुबह से ही दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं अलग अलग दलों की ओर से गैर नृत्य भी किए जा रहे हैं। जोधपुर में कागा स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर में आज शाम से 9 दिन का मेला भरेगा। वहीं जयपुर के पास चाकसू में शील की टोंगरी में कल शीतला माता का पारंपरिक मेला भरेगा। कोटपूतली बहरोड जिले के अनंतपुरा कैंप में आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। CISF के DIG आनंद सक्सेना ने परेड का निरीक्षण कर जवानों को संबोधित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात के मद्देनजर देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया। विधानसभा में राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित, सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। और राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने और सरसों की खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 15 मार्च से। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।